एम्बिशन है 1.5 घंटे का, दूसरा कौन सा
2 घंटे का,
2 घंटे का, और तीसरा जो है
3.5 घंटे का,
3.5 घंटे का।
ब्रदर हम आपको समा देते हैं, वेलकम कहते हैं।
थैंक यू, शुक्रिया। प्रभु यीशु के बुलाए हुए प्यारे भक्तों, भाई और बहनों, दोबारा मेरे को ये मौका मिलते हैं परमेश्वर से आपको मिलने के लिए, आपके बीच में उनके शुद्ध और पवित्र वचन को बताने के लिए। तो पहला मैं अपने पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, साथ साथ में सारे भक्तों जो दक्षिण भारत में हैं और जो मेरे साथ भी आए हुए हैं, सभी का प्यार और मोहब्बत मसीह में आप सभी को हम बताते हैं। और आज जैसा हमारा ब्रदर जी ने बताया, हम शुरू करने वाला ये पढ़ाई, ये जो विषय, ये तो मसीह विरोधी के नाम का विषय है। बहुत सारे ऐसे विषय है हमारा विश्वास में जो हमारे को एक्साइट हो जाता है। तो ये मसीह विरोधी एक ऐसा विषय है जो हमारे बीच में बहुत सारे विचार है, बहुत सारे विचार, वो मैं विचार में बताऊंगा। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के अंदर होके हम देख लेंगे कि परमेश्वर के वचन ये मसीह विरोधी के बारे में क्या बताता है, मतलब मसीह विरोधी का सच्चाई क्या है। क्योंकि आजकल जो मसीह विरोधी का जो मतलब, अगर आप आम साधारण कोई मसीह के साथ आप पूछ ले तो बताएगा, हाँ हाँ मसीह विरोधी आने वाला है, मसीह विरोधी एक बंदा होगा, वो असलम में राजा बन जाएगा, सारा दुनिया के ऊपर हुकूमत चलेगा, 3.5 साल अच्छा रहेगा, आखिरी 3.5 साल बहुत खराब, तो इस तरीके से मसीह विरोधी आने वाला है, ऐसा बोलता है। लेकिन जरा सोच लो, आज की दुनिया के हालत देख के कोई एक मनुष्य आज की दुनिया को हुकूमत कर सकता है? आज का दुनिया देख लो, सारा हर एक जगह में है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इतना बड़ा दुनिया, आज के जमाने में कोई एक तो हुकूमत चल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल लोग अपने देश को भी हुकूमत नहीं चल पा रहे हैं, तो सारा दुनिया तो कैसे चलेगा? तो दूसरे बात, आजकल के विचार है, पिक्चरों से हम देखते हैं एग्जॉर्सिस्ट ओमेन ऐसा करके बताता है, एक लड़का, एक बच्चा जिनकी माथे के ऊपर 666 का जो प्यार लगाया हुआ है, और वो बच्चा बड़ा होके मसीह विरोधी बन जाएगा करके पिक्चरों में हम देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। और ये 66 की बात भी आजकल बहुत सारे विचार है, थोड़े लोग कहता है क्रेडिट कार्ड है वो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कोई वो जो बार कोड है वहाँ अगर कोई हिसाब ले ले, वो संख्या आता है 666 बोलता है। कोई और बताता है कि आजकल जो अमेरिका और ऐसे देशों में छोटा सा एक चिप लगा बनाता है जिनकी जिनमें सारे के सारे जानकारी हो जाता है, और अंदर यहाँ चमड़ी के नीचे लगाता है और ऐसे यूं यूं हाथ दिखा के सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो बोलता है ये है वो 666 का जो मतलब है। तो बहुत सारे विचार है आजकल, बहुत सारे लोग बहुत किस्म के विचार बताता है ये 666 के बारे में, इसका सच्चाई क्या है? आपने सुना होगा ये सारा विचार, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सुन लेंगे परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है 666 के बारे में। और आजकल इसलिए कि हम अंतिम दिनों में हैं, बहुत दिन से लोग तो मसीह विरोधी के इंतजार में हैं। थोड़े बहुत सालों से पहले लोग सोच रहे थे हिटलर था मसीह विरोधी, क्योंकि हिटलर तो ऐसा प्रयास किया दुनिया के ऊपर अपना हुकूमत चलाने के लिए दूसरा दुनिया के युद्ध में, तो बहुत सारे लोग सोच रहा था शायद हिटलर है ये मसीह विरोधी। लेकिन हम जानते हैं हिटलर का कहानी, हिटलर आया और हिटलर गया और दुनिया आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 1980 में उसमें उस जो समय में इराक देश में एक आदमी था जो इराक में कुछ हुकूमत चल रहा था, और उसके अंदर कुछ ऐसा आस था कि वो सारा दुनिया के ऊपर अपने हुकूमत चले, सदाम हुसैन करके नाम से। और सदाम हुसैन ने 1999 में शुरू किया उसके कामों, जब वो कुवैत को आक्रमण किया और उसके बाद एक युद्ध भी शुरू हुआ और बहुत लोग रहा था कि शायद ये सदाम हुसैन है वो मजहब विरोधी, लेकिन सदाम हुसैन भी आया और सदाम हुसैन भी गया, लेकिन दुनिया तो चल रहा है। थोड़े लोग उसके बाद सोच रहा था कि ओसामा बिन लादन वो तो मिस्र मसीह विरोधी होना है, क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश से बच के जा रहा था, लेकिन उसी अमेरिका के हाथ से उनका मौत भी हो गया और खत्म हो गया उसका कहानी। तो मसीह विरोधी कौन है? थोड़े लोग बोलते हैं तुम है मसीह विरोधी तो हम मसीह भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम सच्चाई बताते हैं और वो सच्चाई बाकी सारे विश्वास के अनुसार नहीं है, क्योंकि वचन तो सारे विश्वास के अनुसार नहीं है, तो बोलते हैं तुम है मसीह विरोधी। लेकिन मसीह विरोधी कौन है? मसीह विरोधी का समझदारी अगर हम समझना है तो सिर्फ एक ही जगह से हम समझ सकता है, वो है परमेश्वर के वचन। और परमेश्वर के वचन मसीह विरोधी के बारे में बहुत ही गहरे में बताता है। चलो ये मसीह विरोधी का विषय हमारे लिए मसीहों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कारण क्या है? कारण नहीं है कि हम मसीह विरोधी के ऊपर हमारा कोई चाहत है या मसीह विरोधी के ऊपर हमारा कोई पसंद है। कारण ये है कि मसीह विरोधी पहला आना, उसके बाद प्रभु दूसरे आगमन आएगा, इसके कारण से हम मसीह विरोधी के विषय के ऊपर हम सोचते हैं, हम ढूंढता है सच्चाई, क्योंकि हमारा प्रभु के आगमन के लिए हम इंतजार में हैं। ये वचन तो पढ़ लेंगे, दूसरा अध्याय वचन पहले से लेकर तीन तक। दूसरा पढ़ लो दूसरा तेस्लोनिका दूसरा अध्याय पहला वचन एक से तीन तक।
हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले।
और
तीन तक हो गया बिल्कुल।
और अगले,
और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो।
पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो ये पाप का पुरुष और ये विनाश का पुत्र कौन है? मसीह विरोधी। यहाँ पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया को कहता है कि प्रभु यीशु के आगमन से पहले, दूसरे आगमन से पहले जरूरी है कि पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र पहला प्रकट हो। तो मसीह विरोधी का जो नाम वचन में अलग 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 शब्दों से हम देखते हैं, यहां तो दिया है पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, ये भी मनुष्य विरोधी का एक नाम है। एक और नाम जो हम पढ़ेंगे मत्ती में 24वां अध्याय 15वां वचन, मत्ती 24:15।
तो जब तुम उस
उजाड़ने वाले ग्रिड वस्तु, पढ़ लो,
उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े हुए समझे।
तो उजाड़ने वाला घृणित वस्तु, ये एक और नाम है, एक और शब्द है मसीह विरोधी के लिए। उजाड़ने वाला घृणित वस्तु कहाँ, क्या, किधर होगा? पवित्र स्थल में, है ना? क्या दिया?
पवित्र
स्थान में कड़े होके, है ना, कड़ी हुई देखोगे। तो कड़ी हुई, तो यहाँ देखो, यहाँ तो अगर पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये उजाड़ने वाले घृणित वस्तु एक बंदा है, क्योंकि वो कट रहा है। किधर कट रहा है? पवित्र स्थान में कर रहा है। और वचन पढ़ लेंगे अभी यही मसीह विरोधी के बारे में पुराना नियम से, दानियल के किताब 7वां अध्याय 20 से लेकर 25 तक। दानियल 7वां अध्याय 20। जी 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 जी।
फिर उसके सिर में से 10 सिंगों का भेद और जिस नए सिंह के निकलने की 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सिंहों के अधिक भयंकर था। उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई और मैंने कहा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। उसने कहा उस चौथे जंतु को जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी होकर और सब राज्यों के भीतर होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांत कर चूर चूर का। और उन दस सिंहों का अर्थ ये है कि उस राज्य में से दस राजा उठेंगे।
हाँ तो ये दस सिंह है दस राजा
और उसके बाद उन पहलों से भीतर एक और राजा उठेगा जो तीन राज्यों को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा।
हाँ मसीह विरोधी यहाँ तो बताता है एक और राजा अलग किस्म का राजा है बाकी दस राजाओं से अलग का एक राजा है ये जो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेंगे
और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेंगे।
हाँ परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेंगे
और समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेंगे।
हाँ समयों और व्यवस्था बदलने का आशा करेंगे
वरन साढ़े तीन काल तक के सब उसके वश में कर दिए जाएंगे।
देखो तो ये वचन में भी हम पढ़ता है ये मसौदी के बारे में यहाँ तो दिया गया है ये एक सिंह है और ये सिंह का मतलब है ये एक राजा है। दस सिंह के बीच में ये एक सिंह उभर के आता है दस सिंह से भी अलग दस सिंह जो जैसा है ये अलग सा सिंह है क्योंकि ये सिंह में आंख है मनुष्य का आंख है और मुंह है बड़े बड़े बातों करने का मुंह है। ये सिंह जो है एक राजा है दस सिंह भी राजा था। तो ये इधर से ये तीन वचन देखो हमने पढ़ लिया है थिस्सलुनीकियों से हमने पढ़ लिया है मती से हमने पढ़ लिया है और दानियल से हमने पढ़ लिया है मसीह विरोधी के बारे में। पहला वाला बोला कि ये पाप का पुरुष अर्थात विनाश मतलब एक बंदा एक इंसान जैसा बताता है। दूसरे वचन में हमने पढ़ा उजाड़ने वाला घृणित वस्तु किधर है पवित्र स्थान में कड़े हुए। तो यहाँ से भी हम क्या मालूम हो रहा है कि ये भी एक बंदा है एक इंसान है जो यहाँ कड़े हुए है। और तीसरे वचन में हमने दानियल के सातवां अध्याय से हम पढ़ लिया है कि ये चौथे जंतु के चौथे पशु के ऊपर हम देखता है ये दस सिंह और दस सिंह के बीच में एक और सिंह निकल के आता है। दस सिंह दस राजाओं और ये और एक सिंह एक अलग किस्म का राजा है जो इनके बीच में उभर के आता है। तो ये सिंह जो है क्या करता है ये परम प्रधान के विरुद्ध बड़े बड़े बातें करते हैं परम प्रधान के भक्तों को पीसते हैं और समयों और व्यवस्था को बदलने को चाहता है। तो ये सब मसीह विरोधी के संबंधित वचनों हैं। सारे वचनों को हम पढ़ते हुए ध्यान करते हुए ऐसा लगता है कि मसीह विरोधी एक कोई इंसान कोई बंदा कोई राजा है इतने सारे वचन को ध्यान करते हुए। और इस बात को पढ़ते हुए हम क्या ऐसे फैसला को जाऊं कि मसीह विरोधी एक राजा होगा मसीह विरोधी एक अकेला एक बंदा होगा मसीह विरोधी ऐसा एक इंसान के आएगा जो सारा के ऊपर राज्य करेंगे क्या हम ऐसा नतीजा पर हम पहुंच जाए ये हम पूछना है क्योंकि परमेश्वर का वचन एक आम साधारण किताब नहीं है जहां से हम सिर्फ तीन वचन उठा के हम कोई नतीजा पर पहुंच जाए। हम आएंगे 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 बहुत सारी बातें हैं ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हो तो इसको कैसे शुरू करें इसको कैसे लाऊं बहुत चैलेंज है बहुत बड़ा चुनौती है। तो अभी हम तीन वचन में देखा है तीन वचन में बहुत साफ तरीके से बताया है मसीह विरोधी के बारे में और तीन में मसीह विरोधी कोई एक इंसान एक राजा एक बंदा जैसा दिखाया गया है। लेकिन अभी हम एक और वचन लेंगे अभी यूहन्ना से लेंगे और यूहन्ना वहां मसीह विरोधी का नाम ही इस्तेमाल करता है वहां नहीं आता है कि उजाड़ करने वाला घृणित वस्तु वहां नहीं आता है कि ये है पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र ऐसा शब्द नहीं आता है। सीधा सीधा उधर क्या आ गया मसीह विरोधी। वहां वहां चेले यूहन्ना क्या क्या लिखता है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18वां वचन, पहला यूहन्ना 2:18।
हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है।
हाँ हे बच्चों, आपको जानते हैं, आपने सुना है कि हम अंतिम समय में हैं और अभी मसीह विरोधी आना है। पढ़ लो।
उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं।
मसीह के विरोधी मतलब अनेक, देखो यूहन्ना एक नहीं अनेक बोल रहा है, तो मसीह के विरोधी अनेक मसीह विरोधी बोलता है अभी भी है। अभी जब वो खत लिख रहा है, जब वो खत लिख रहा है बोलता है अभी, मतलब पहला पहला सदी में अनेक मसीह के विरोधी है। पढ़ लो वही वही 18वां जी, वही पढ़ लो।
ये अंतिम समय है, और ऐसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है।
ये तो थोड़ा हमको उलझन में लेके जाता है, क्योंकि हम तो एक ही मसीह विरोधी को ढूंढ रहे हैं, और यहाँ यूहन्ना बोलता है अनेक मसीह विरोधी है। हम तो ढूंढ रहा है अंतिम समय में, अर्थात अभी कोई उठ के आएगा, लेकिन बोलता है पहला सदी में ही उठ के आया बहुत सारे मसीह के विरोधी। जी
वही
वही समय में, तो ये कैसे समझे, ये थोड़ा उलझन में लेके गया है, लेकिन हम याद में रखना है सारे वचन परमेश्वर का वचन है, तेरा वचन सत्य है, सिर्फ हम समझना है। तो अभी इसको कैसे समझे, चलो यूहन्ना एक चेला है, एक अपोस्टल है। यूहन्ना ने ये बात बताया कि उसी समय, मतलब यूहन्ना ये खत लिख रहा था उसी समय प्रस्तुत थे अनेक मसीह के विरोधी। ये बात सुनते हुए हमारे को हैरान होता है, लेकिन हैरान होने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बात पौलुस भी बताता है। दो चेले का गवाह, दूसरा चेला पौलुस, पौलुस ये बात लिखता है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-8। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7-8।
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है।
देखो लिख रहा है थिस्सलुनीकियों को, बोलता है अधर्म का भेद अब ही कार्य कर रहा है, मतलब जैसा यूहन्ना बोला अभी भी हमारे बीच में अनेक मसीह के विरोधी है, उसी तरीके से चेले पौलुस बोल रहा है अधर्म का भेद अब ही काम करके आ रहा है। पढ़ लो।
अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार लेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा।
ये तो बहुत ही गहरा वचन है, अभी जरा सोच लो क्या क्या बोल रहा है इधर पौलुस। पहला बोल रहा है ये अधर्म का भेद अब ही कार्य कर रहा है, दूसरा बोलता है कोई रुकावट है उसके लिए, वो प्रकट नहीं हो पा रहा है, वो रास्ता से निकल जाएगा उसके बाद प्रकट हो जाएगा, और अंत बोल रहा है कि इस अधर्म का भेद का नाश हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, कब, उनके दूसरे आगमन में। ये सब का मतलब क्या है, पौलुस बोल रहा है ये मसीह विरोधी वचन के अनुसार शुरू होता है पहला सदी और उसके खत्म हो जाएगा पर प्रभु के दूसरे आगमन। हम कितने कितने सदी हो गया है, 20 सदी, 2000 साल है कि नहीं, पहला सदी से अब तक कितने साल हो गया है, लगभग 2000 साल। तो ये मसीह विरोधी जीवित रहेगा 2000 साल, ये मसीह विरोधी प्रकट होना है। पौलुस बोलता है जब वो लिख रहा है ये कष्ट, वो छुपे छुपे है, अभी वो अभी प्रकट होने को चाहता है लेकिन कोई उसको रोकता है, वो हटाना है, आने के बाद वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये मसीह विरोधी का नाश हो जाएगा कब? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में, जब प्रभु यीशु उनके मुंह के फूक से, उनके मुंह के फूक से इस मसीह विरोधी का सर्वनाश करेगा। क्या बड़े बात बोल रहा है इधर पौलुस। देखो, बोलता है हमारे को कि ये मसीह विरोधी जिंदा रहेगा 2000 साल। अभी आप बताओ, कोई बंदा आपने सुन लिया है 2000 साल जीवित होके? ब्रदर जी, पंजाब में कहीं, हिमालयस में, कश्मीर में छुपा होके? हमने नहीं सुना है। ब्रदर आपने कभी सुना है कोई 2000 साल के जीवित होते हुए बंदे? नहीं, ये नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। कोई मनुष्य 2000 साल जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अभी देख लो सच्चाई कैसे प्रकट हो रहा है। अभी सच्चाई है ये हम बदल नहीं सकता है, ना ही पलट सकता है, ना आप भी पलट सकता है। ये पौलुस ने बताया हुआ वचन जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए से बताया गया है मसीह विरोधी के बारे में, जो शुरुआत होगा, हुआ पहला सदी, जिसका सर्वनाश होगा प्रभु के दूसरे आगमन, जो जीवित रहेगा 2000 साल। ये वेद है, ये 2000 साल जीवित रहेगा ये मसीह विरोधी वेद। दो अपोस्टल, दो चेले का साक्षी का गवाही बताता है कि मसीह विरोधी का शुरुआत हुआ पहला सदी। एक चेले पौलुस बोलता है मसीह विरोधी का नाश होगा प्रभु के दूसरे आगमन में। तो 2000 साल रहेगा मसीह विरोधी, 2000 साल। मसीह विरोधी कोई बंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना बोला अनेक मसीह के विरोधी। एक तो जीवित रहेगा 2000 साल, दूसरा अनेक मके विरोधी अभी भी है बोला। तो इसका मतलब है ये कोई अकेले कोई इंसान या कोई बंदा तो नहीं रह सकता है, ये तो एक अनेक इंसानों का संगठन, ये तो एक संगठन ही हो सकता है, क्योंकि एक संगठन में ही अनेक है। संगठन एक है लेकिन उनके अंदर सदस्य अनेक है। तो इससे हम मालूम होता है इस वचन से कि मसीह भी जो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जहां यूहन्ना अपोस्टल चेले और पौलुस चेले बताता है, ये एक ऐसा संगठन है जो शुरू होता है पहला सदी में और चलते 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 कोई ना कोई रुकावट उसके सामने खड़ा करता है, और वो रुकावट हटाने के बाद वो प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद उसका सर्वनाश हो जाता है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में, जब प्रभु यीशु फूंक से और प्रभु यीशु के आगमन के रोशनी से उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक संगठन, 2000 साल का संगठन। वचन क्या बोला, क्या वेद है ब्रदर? बस दोबारा पढ़ लीजिए, दूसरा तस्लोनिकियों में, इंग्लिश में मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का वेद, अधर्म का वेद, अधर्म का वेद। तो ये संगठन है अधर्म वेद। चलो एक बात तो हम अभी ध्यान करेंगे, मसीह विरोधी, इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? तो सोचता है कि ये मसीह के विरोध, मतलब जो कोई मसीह के विरुद्ध होता है इसको मसीह विरोधी नाम दे देंगे। जैसे जैसा आरएसएस कुछ विरोधी काम कर रहे थे तो हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, मसीह विरोधी। वहां बजरंग दल का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका नाम दे देते हैं मसीह विरोधी। वहां सऊदी अरेबिया में जाकर आप बाइबल के साथ जाता पहाड़ के फेंक देता है तो बोलता है ये मसीह विरोधी। तो मसीह के विरुद्ध जब होता है तो उसको नाम देते हैं मसीह विरोधी। लेकिन हम जब ये शब्द ग्रीक के भाषा में हम देखते हैं, मतलब कॉन्कॉर्डेंस के साथ जो नया नियम में देखते हैं, हमको एक और मतलब मिलता है जो बहुत अहम और महत्वपूर्ण मतलब है। ग्रीक के भाषा में 500 का नंबर कॉन्कॉर्डेंस, स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस 500, एक और नंबर है 473, एक और नंबर है 5547, 5547। ये सारे नंबर से हम क्या पता करता है, ये मसीह विरोधी ना सिर्फ मसीह के बह बल्कि ये इसका इसका चाल क्या है कि ये मसीह का स्थान लेते हैं, मसीह का स्थान लेते हैं, मतलब ये एक बहरूपीय, ये एक नकल, जैसे जैसा नोटों में हम जैसे देखते हैं ना, 500 रुपया का नोट आ जाता है, बैंक में जाता है तो, और कैशियर बोलता है सर इधर आओ, ये नोट आपके हाथ से कैसे आया, मेरे हाथ से कैसे आया, मैं तो क्या क्या हो गया नोट का, नहीं ये नकल का नोट है सर, हम तो नहीं जानते नकल का नोट है, मैं जेब में पैसा मिलता मैं मेरे जेब में डालते, नहीं ये नकल का नोट है, आप तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, नकल पहचान नहीं पा रहा है, असली और नकली दोनों एक जैसा लगता है हमारे देखने में। तो ये मसीह विरोधी का सबसे महत्वपूर्ण मतलब जो हम अभी ये कॉन्कॉर्डेंस के जरिए से देखता है, इंग्लिश में बोलता है इट्स अ काउंटरफिट, काउंटरफिट बहरूपिय, दिखाता है कि मैं मसीह है, बताता है कि मैं मसीह है, लेकिन असली में मसीह है, मसीह नहीं है, ये नकल है, ये धोखा है, ये डोंग है, ये है मसीह विरोधी, ये है मसीह विरोधी, ये शैतान का चाल है, ये एक ऐसा संगठन जो हम वचन में पढ़ता है, ये प्रकट होगा पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में। मत्ती 24वां अध्याय 15वां वचन, मत्ती 24:15,
तो जब तुम उस उजाड़ने वाली विभिन्न वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो,
तो ये याद में रखना, ये कोई साधारण सरल भाषा नहीं है, ये तो चिन्ह के भाषा है। तो चिन्ह के भाषा में कहता है कि ये उजाड़ने वाला ग्रणित वस्तु, उजाड़ने वाला वस्तु, याद में रख लो, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा बाद में, क्यों ऐसा नाम दिया गया है, क्या उजाड़ते हैं, उजाड़ने वाला ग्रणित वस्तु, ये पवित्र स्थान में खड़े हुए होते हैं। चलो ये यहां तो पवित्र स्थान दिया गया है, इसी पवित्र स्थान के एक और मतलब हम पढ़ते हैं दूसरा तेसलोनिकियों में, दूसरा तेसलोनिकियों दूसरा अध्याय 4वां वचन,
यो विरोध करता है और हर एक पे जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर,
अभी वहाँ तो पवित्र स्थान में खड़े हुए, यहाँ परमेश्वर के मंदिर में बैठकर
अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है।
परमेश्वर के मंदिर, पवित्र स्थान, सब क्या है, मतलब है कलीसिया, क्योंकि वचन में बोलता है तुम खुद परमेश्वर का मंदिर है। अच्छा मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वां वचन, पहला कुरिन्थियों 3:16,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है।
हाँ परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया, और परमेश्वर का कलीसिया है परमेश्वर का घर। पहला तिमोथियुस 3:15 वचन, पहला तिमोथियुस 3:15 वचन,
मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। पहला
वही वही पर बराबर वह पढ़ रहा है, पहला तिमोथियुस 3:15 आगे पढ़ो, बराबर पढ़ रहा है
कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर,
परमेश्वर का घर
जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है,
जो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है,
और ये सत्य का खंभा और ये,
तो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है, परमेश्वर का घर मतलब परमेश्वर का मंदिर मतलब पवित्र स्थान, इसके अंदर ये मसीह विरोधी आके करता है, इसके अंदर ही मसीह विरोधी आके बैठता है। ये सब चिन्ह का भाषा है, बड़े बड़े सच्चाई चिन्ह के भाषा में बता के आ रहा है, पता नहीं कि तुम कुछ समझ गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के अंदर कर रहा है, क्योंकि जो जो रोशनी जो हम मिल रहा है तो हम तो बहुत थोड़ा तो पहला पहला पता कर सकता है। तो यहाँ बहुत साफ तरीके से हम मालूम किया है कि ये मसीह विरोधी, ये एक संगठन, ये एक बहरूपीय संगठन, ये तो एक नकल का संगठन, ये किधर आके अंदर आके काम करता है, ये असली कलीसिया के अंदर काम करता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा कह और कैसे ऐसा बात हो जाता है? असली कलीसिया के अंदर कोई बहरूपीय आ सकता है? हाँ, वचन बोलता है ना,
वो बीज जो एक बड़ा और उसके ऊपर आकाश वन पक्षी ने डेरा किया।
थैंक यू दोस्तों। तो अभी ये 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 कलीसिया के अंदर ये बहरूपीय, ये एक संगठन अंदर आ रहा है, ये क्यों और कैसे, इसका जवाब मिलता है दूसरा तस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय तीसरा वचन, दो तीन।
किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले।
हाँ, धर्म का त्याग ना हो ले। इंग्लिश में अनलेस दे कम ए फॉलिंग अवे फर्स्ट, धर्म का त्याग ना हो ले। इसका मतलब क्या है, धर्म का त्याग ना हो ले? पौलुस ने इस बात के बारे में चेतावनी दिया था, इस बात के बारे में, ये धर्म ना ना हो, क्या बोला ब्रदर,
धर्म का त्याग
ना हो ले, मतलब ये फॉलिंग अवे चेले। पौलुस ने लिखा है इस चेतावनी, पहला तिमोथियुस चौथा अध्याय पहला वचन,
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे।
देखा, ये एक चेतावनी पौलुस बोला, आने, क्या बोला, आने वाले शुरू से कर लो,
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि
आने वाले समूह इंग्लिश में लैटर टाइम, आने वाले समय, लेटर टाइम, इसका मतलब क्या है? पौलुस जब ये पहला सदी में ये वचन दावनी के रूप में लिख रहा है, ये एक भविष्यवाणी भी था। पौलुस बोल रहा है आने वाले समय, मतलब 200-300 साल के बाद कुछ बात होने वाला है। क्या होने वाला है? विश्वास छोड़ जाएगा। कौन सा विश्वास छोड़ जाएगा? हमारा विश्वास आम साधारण विश्वास नहीं है। वचन में कहता है हमारा विश्वास का नाम है अति पवित्र विश्वास, क्योंकि ये सच्चा शिक्षा और सच्चा ज्ञान जो पिता परमेश्वर ने एक ही किताब के जरिए से हमारे को दे दिया है, और इसको समझना मुश्किल है, इसको समझना है यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा। तो ये पवित्र विश्वास जो परमेश्वर हमको दिया है, जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दिया है, अपोस्टल पौल बोलता है, चेला पौलुस बोलता है कि आने वाले समय में ये विश्वास को छोड़ के बरमाने वाले आत्माओं को, और पढ़ लो हुसन, पढ़ लो, बरमाने वाले आत्माओं को और झूठे,
आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर,
आने में समयों में बरमाने वाले आत्मा और दुष्ट आत्मा के शिक्षाओं को कान
मन लगा के विश्वास से बहक जाएंगे।
हाँ, मन लगाएंगे, क्या मन लगाएंगे? बरमाने वाले आत्मा और झूठे नहीं दुष्ट आत्माओं का झूठा शिक्षा। अभी आपने सुन लिया है कि बाइबल में जो आत्मा जो शब्द है, स्पिरिट का शब्द जो है, बहुत सारे मतलब है। परमेश्वर खुद ही एक आत्मा है, उस तरीके से हम बात नहीं करता है। योहन्ना 4:24 परमेश्वर खुद ही आत्मा है, वो नहीं बोला। पवित्र आत्मा है, वो भी हम नहीं बोला। नहीं, सिर्फ आत्मा शब्द, स्पिरिट शब्द जब आता है, इसका तीन मतलब है। पहला है सांस, जो परमेश्वर हमको दिया है, वो है आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट। वो तो हम पढ़ लिया है वहां क्लास में, उसका डिटेल्स तो हमने पढ़ लिया। तो पहला आत्मा का मतलब है सांस। आत्मा क्या चीज है? आत्मा वो चीज है जो आंख से नहीं दिखता है, अनदेखी है, और जो शक्तिशाली है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। तो सांस पहला आत्मा का मतलब है। दूसरा मतलब है आत्मा क्या है, जब हम पढ़ते हैं कि दानियल दो दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और उसके आत्मा में उलझन हुआ। आत्मा मतलब उसके सांस में नहीं, उसके 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 मन में, मन में, मन में। तो इसके मन में, मन किधर है ब्रदर, तुम्हारा मन किधर है, इधर दिखाएगा। चलो हम देखना है तुम्हारा मन, मैं एक बड़ा चाकू लेके आता हूँ, तुम्हारा मुंडा को हम हम काटते हैं, अंदर देखता किधर है तेरा मन। ये यहाँ तो सिर्फ दिमाग दिखता है, मन तो नीचे गया। नहीं नहीं, मन तो दिख नहीं सकता, मन तो अनदेखी चीज है। माइंड, ब्रेन इज नॉट माइंड, माइंड इज नॉट ब्रेन, माइंड ये अनदेखी है। जब तक हमारा पास मन नहीं है, हम जिंदा नहीं रह सकता, हम कुछ काम का चीज नहीं हो सकता है। तो मन है दूसरा मतलब है आत्मा का, लेकिन यहां दिया है बरमाने वाला आत्मा। आत्मा का एक तीसरा मतलब है, पहला तो सांस, दूसरा तो मन, लेकिन एक तीसरा मतलब है आत्मा, जो बहुत महत्वपूर्ण मतलब जो प्रभु यीशु हमारे को दिया है। वो मतलब यूहन्ना 6 अध्याय और 63 वचन, 6:63।
आत्मा तो जीवनदायी है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है।
बातें में कितना शक्ति है। हिटलर कोई बातें किया जर्मनी में, लोग पागल हुआ। सारे इतने जोश आ गया, क्यों? सिर्फ शब्दों, प्रभु यीशु शब्दों, शैतान के शब्दों। शब्दों में क्या है, शक्ति है। देख सकता है, नहीं देख सकता है, लेकिन शक्ति है। तो शब्दों से बन जाता है शिक्षा। तो ये बरमाने वाले आत्मा का मतलब है बरमाने वाला शब्दों, बरमाने वाला शिक्षा। बरमाने का मतलब क्या है, इतना आकर्षक है, देखते ही कुछ और समझ लेते हैं हम। मतलब ये कोई भक्ति वाली बातें जैसा लगता है, भरमाने वाले आत्मा। थोड़े तो आने वाले समयों में विश्वास को छोड़ के भरमाने वाले आत्मा को मन देंगे। भरमाने वाले आत्मा का मतलब क्या है, उदी वहां पौलुस भविष्यवाणी के रूप में बोलते हुए बताता है कि कैसा एक भरमाने वाले आत्मा प्रकट हो जाएगा। बोलेगा परमेश्वर की सेवा करते हुए नहीं करना है, हम पूरा का पूरा अर्पण करेंगे परमेश्वर को। शादी नहीं करना है, शादी करना है, परमेश्वर नहीं बोला, कहीं भी नहीं बोला परमेश्वर। परमेश्वर साफ साफ बोलता है कि एक याजक नहीं, बिशप क्या कहता है, एक बिशप को क्या कहता है, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष तिमोथी में हम पढ़ते हैं, एक जो अध्यक्ष जो उनके पद में जब आ जाता है उसको एक पत्नी का पति होना चाहिए। जी, एक पत्नी का पति होना चाहिए। प्रभु साफ साफ बताता है उनके सेवा में जो कोई सेवा करता है वो तो शादीशुदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बरमाने वाले आत्मा आया कि हम शादी नहीं करना है, शादी करना मना है, ये सब हम त्याग करना है, ये सब परमेश्वर के लिए त्याग करना है। तो ऐसे करते हैं आजकल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। तो ये सब परमेश्वर नहीं बोला था शादी नहीं करना है, ऐसा कोई शपथ लेना है कि हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम देखते हैं, हम थोड़ा जो हमारे दोस्तों जो सफ़ेद सफ़ेद अंगी पहनता है, बोलता है इसका नाम है ब्रदर, बोलता है उसका नाम है फादर, और बोलता है तुम शादी हो गया, हाँ तोबा हम शादी तो नहीं करते हैं। और दूसरे औरतों देखते हैं वो भी सफ़ेद वाला अंगी पहनता है और पूछता है तुम शादी कर, क्या बात कर, हम तो शादी नहीं करते, तो हम तो सिस्टर है। लेकिन ये सब देखे तो हमको ऐसा लगता है अरे बहुत भक्ति है। कभी कभी तो जिन जिन खानदानों से वो ऐसा हो जाता है ना, जब वो छुट्टी पे आ जाता है उनको ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा प्रेम से देखते हैं, ऐसा मर्यादा से देखते, जैसे ये लोग ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है परमेश्वर के लिए। भरमाने वाला आत्मा, शैतान ऐसा करने को बोल रहा है। क्यों मैं शैतान बोलता है? क्योंकि परमेश्वर नहीं बोला। जब परमेश्वर नहीं बोला तो कौन और बोलेगा? जब परमेश्वर एक बात नहीं बोलता, दूसरा शिक्षक कौन है इधर? कौन है? शैतान, जो मनुष्य के रूप से जरिए से उनके शिक्षा लेके आता है। तो ये एक बरमाने वाला आत्मा, शादी नहीं करना है, शादी मना है। एक और बरमाने वाला आत्मा जो आया था खाने के पदार्थों के बारे में, खाने की चीजों, बोला कि हम फ्राइडे को, रविवार को, उस दिन जहां प्रभु ने मरा, हम रविवार को हम मांस तो नहीं खाएंगे। तो ये भी एक ऐसा शिक्षा हुआ कि हम कोई बड़ा त्याग कर रहे हैं कि हम एक दिन हमारे पसंदी का मांस तो हम छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? ये बात अहम नहीं है जो अंदर जाता है, ये बात अहम है जो अंदर से बाहर आता है। तो देखिए, ये सारे शिक्षाओं ऐसा था, भरमाने वाले, भक्ति जैसे, बहुत भक्तिशील शिक्षा की जैसा दिखाने लगा। तो इस तरीके से वचन और विश्वास प्रकट हुआ। अभी भी है जिनके पास कोई वचन का सबूत नहीं है, जो असली में वचन के विरुद्ध है। जब हम बोलता है इसमें वचन है, तब हम बोलता है परमेश्वर ये बात शिक्षा नहीं दिया है, गुस्सा आ जाता है, मारने को भी आता है। लेकिन ये वचन का सबूत नहीं है, ये बरमाने वाले आत्मा। एक और जो प्रभु जो पौलुस बोला, दुष्ट आत्माओं का झूठा शिक्षा, दुष्ट आत्माओं का झूठा शिक्षा, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो कोई जो वचन से नहीं निकलता है वो है दुष्ट आत्माओं का झूठा शिक्षा। जैसा हमने पढ़ लिया है, आत्मा, मनुष्य के पास आत्मा नहीं है, मनुष्य के पास आत्मा नहीं है। लेकिन वो लोग क्या बोलता है? मनुष्य के पास आत्मा है, वो अंदर है, मरने के समय में निकल जाता है, चले जाता है, स्वर्ग को चले जाता है, नरक को चले जाता है, भटकते रहता है, घर में आ जाता है, चपाती बनाता है, ढोल बजाता है। लेकिन वो बोलता है हमारे पास आत्मा नहीं है, हम खुद ही आत्मा है, हम जीवित आत्मा है। एक आत्मा बनने के लिए दो चीज परमेश्वर इस्तेमाल किया, मिट्टी से एक शरीर बनाया, और उस शरीर के नस के नाक में क्या किया? सांस फूका, फूकने के बाद वो शरीर जीवन पे आया। और जब तक उस शरीर में वो सांस रहता है वो जीवित रहता है, वो जीवित आत्मा बन जाता है। क्योंकि एक जीवित आत्मा बनने के लिए शरीर चाहिए, सांस चाहिए, दोनों मिलके बन जाता है जीवित आत्मा। लेकिन मौत का दंड भी है, पाप का मजदूरी है मौत। इसलिए इस सारे आत्माओं, अभी कोई आत्मा जिंदा नहीं रह सकता है। जो आत्मा पाप करता है वो आत्मा मरेगा। तो मौत में क्या होता है? जो सांस हमारे को जीवन देते रहा, हम छोड़ते हैं, वापस लेने नहीं सकता है, वापस ले नहीं सकता है, छोड़ते हैं। जब वो निकल जाता है ना, वापस अंदर नहीं आता है, तो ये शरीर वापस वो बिना जीवन का स्थिति, वो मरे हुए स्थिति को चले जाता है। ये है परमेश्वर का सच्चाई, ये है परमेश्वर का सच्चाई। आज कहाँ है ये? हिंदू के पास है, मुसलमान के पास है, यूदर के, क्रिश्चियन के पास है, रोमन कैथोलिक के पास है, किधर है? कहाँ भी नहीं, कहाँ भी नहीं। ये है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा परमेश्वर के बच्चों के पास, कोई और के पास नहीं है। पूछ के लेना है, पूछ के लेना है। ये ऐसे अपने आप ये ज्ञान नहीं आएगा, ये परमेश्वर से पूछ के लेना, परमेश्वर भेजेगा। तो देखो, दुष्ट आत्माओं का झूठा शिक्षा, एक ही उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण है नरक। सबसे मन प्रिय विषय है सब मसीहों के बीच में, नरक है भाई। आप तो सभी तो नरक जाने वाला है, तुम, हम तो नहीं जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार वो जा रहा है कुछ प्यार है उनके लिए नहीं तो हम तो कोशिश किया वो नहीं आया तो क्या करना परमेश्वर उनको उधर भी डाल देगा। देखो नरक, नरक है बाइबल में, नरक नहीं है नहीं है, हमने नरक नहीं है नहीं बोला, लेकिन नरक का मतलब क्या है? नरक का मतलब है एक मतलब जो हम शियोल में देखता है, जो हम हेडीज में देखता है, उसका मतलब क्या है? एक दफनाने का जगह, दफनाने का जगह। इसका मतलब है नरक क्या है? पाप का मजदूर है वो, मरे हुए स्थिति, मरे हुए स्थिति वो है नरक। कहां है हमारा दादा परदादा? नरक में है। कहां प्रभु यीशु 3 दिन? नरक में थे। नरक का मतलब क्या है? नरक का मतलब है दफनाने वाले स्थिति, दफनाने वाले स्थिति। तो यहां तो देखता है तो ये नरक का जो मतलब जो हम वचन में देखता है, ये जो नरक है, आजकल लोग नरक नहीं बोलता है, आजकल लोग क्या बोलता है? नरक में जीवन है, नरक में लोग तो जिंदा रहता है, नरक में लोग चिल्लाते रहता है, नरक में लोग तरस और बहुत किस्म किस्म के अनुभव होता है, वहां जलते हुए आग होता है, वहां आत्मा का नाश नहीं होता है। ये सब वचन में नहीं बताया, ये सब वचन में नहीं, वचन में बोलता है मौत। वचन में ये भी बोलता है दूसरा मौत, पहला मौत दूसरा मौत, हेडीज शियोल और गहना। वो शिक्षा प्रभु ने दिया, एक मौत से दूसरा मौत पहुंचने से पहले एक पुनरुत्थान, पुनरुत्थान मिलने के बाद अगर फिर भी परमेश्वर के दया, परमेश्वर का शिक्षा, परमेश्वर का सच्चाई को इनकार करते हैं, ऐसे लोगों को वही मजदूरी, पाप का मजदूरी मौत, क्योंकि जानबूझ के पाप के ऊपर पसंद है, जानबूझ के। आजकल बहुत सारे लोग को पाप का पूरा पूरा मतलब नहीं समझ पा रहा है, समझ पा रहा है लेकिन पूरा पूरा तो नहीं कह सकता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब सब सारे जी उठ के वापस आएंगे तो उसको रोशनी मिलेगा, सभी के ऊपर परमेश्वर के आत्मा डाला जाएगा, सभी तो परमेश्वर के वचन को पढ़ के समझ जाएगा, उसके बाद न्याय हो जाएगा, तभी तो मालूम हो जाएगा कि कौन पाप का विरुद्ध है और कौन पाप का पसंद करता है। जो पाप का पसंद करता है वो शैतान के प्रतिरूप में है, जो पाप को विरुद्ध करता है प्रभु यीशु के प्रतिरूप में है। तो ये सब जो परमेश्वर का न्याय है, ये सब परमेश्वर का वचन है। देखो झूठे शिक्षा, दुष्ट आत्माओं के झूठे शिक्षा, ऐसे ही बिसर जा सकते हैं, आपको जानता है। वचन में पढ़ लो भजन संहिता 96:5, भजन संहिता 96:5।
क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति 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 ही है, परंतु पिता परमेश्वर ही ने स्वर्ग को बनाया है।
देश देश के सब देवता मूर्ति ही है, असली अच्छा ट्रांसलेशन में शैतानों तो है। द गॉड्स ऑफ द नेशंस आर ऑल द डेविल्स। तो देखो प्रभु पौलुस ने ऐसा भविष्यवाणी दिया, बोला कि आने वाले समयों में थोड़े तो विश्वास छोड़ देंगे और बरमाने वाले आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं का शिक्षा को मन देगा। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर के वचन का पढ़ाई को छोड़ के दूसरे दूसरे शिक्षा सुनने को शुरू हुआ। देखो पढ़ का शिक्षा अगर हम मिलना है, हम थोड़ा कुछ बहुत मेहनत उठाना है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है, समय उठाना है, ऐसे बैठना है, ऐसा पढ़ना है, ऐसा समझना है, तभी तो मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या है। ऐसा तो अपने आप अंदर नहीं आ जाता है, तो हम तो कुछ मेहनत उठाना है। लेकिन क्या हुआ, चलते 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 परमेश्वर के वचन को पढ़ाई को छोड़ दिया, पढ़ाई को छोड़ के फिर भी परमेश्वर के लोग हम हैं बोलने लगा। तो प्रभु ऐसा भविष्यवाणी दिया, होशेया 4:6।
मेरे ज्ञान के ना होने मेरी प्रजा नाश हो गई है।
देखो मेरे वचन के ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा, मतलब जो मेरे नाम से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लोग है, मेरे प्रजा को क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, नाश हो रहा है। अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर के वचन के ज्ञान खोने लगा। खोते खोते क्या हुआ, एक जगह इंतजाम हुआ इस शैतान को अपने अपने शिक्षा को कलीसिया के अंदर लाने के लिए, मतलब क्या बोला जो जो हमने बोला द फॉलिंग अवे फर्स्ट, हिंदी में क्या बोला, धर्म का त्याग ना हो, धर्म का त्याग ना हो, तो धर्म का त्याग होने लगा, परमेश्वर के वचन का त्याग होने लगा और धीरे धीरे मसीह विरोधी को एक ऐसा मौका मिला कलीसिया के अंदर दाखिल होने के लिए। तो कलीसिया के अंदर दाखिल होके पवित्र स्थान में परमेश्वर के मंदिर के अंदर आके क्या करने लगा, क्या बोलने लगा, वचन में देखेंगे। और भविष्यवाणी वचन प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1वां वचन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1वां वचन।
फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पैरों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जब पीड़ा में थी।
प्रकाशित वाक्य रेवलेशन थोड़ा मुश्किल का किताब है, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए हम बहुत ज्यादा गहरा प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा। ये तो पहला इंट्रोडक्शन, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 1वां वचन बताता है स्वर्ग में, स्वर्ग में आपने पढ़ा है आसमान और स्वर्ग ना, आसमान और स्वर्ग दो शब्द है हिंदी में, स्वर्ग का एक ही मतलब है परमेश्वर का रहने का स्थान। तो ये परमेश्वर का रहने का स्थान नहीं हो सकता है, ये तो आसमान है। आसमान का मतलब है दो, एक मतलब है जो सूर्य चांद और जो तारों का रहने का जगह, ये है आसमान। लेकिन आसमान का दूसरा मतलब जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मतलब है, ये है जो हम आकाश भी कहते हैं, आकाश। आकाश का मतलब है देखी आत्मिक रूप का हुकूमत, अनदेखी आत्मिक रूप का हुकूमत। लेकिन ये आकाश और ये आसमान जहां हम पढ़ रहे हैं, ये एक और मतलब है, ये है धर्म का दुनिया। धर्म की बात जो होता है ना वो अनदेखी है ना, विश्वास की बात है। तो ये धर्म की दुनिया, धर्म की दुनिया में मैंने देखा एक और चिन्ह, एक नया धर्म पैदा होने वाला है। कौन सा धर्म है? ये है मसीह का विश्वास। तो ये नया मसीह का विश्वास शुरू हो रहा था और ये मसीह का कलीसिया का चिन्ह कैसे दिखाया इधर, एक स्त्री, एक स्त्री। क्यों? कलीसिया प्रभु यीशु के लिए एक दुल्हन, कलीसिया प्रभु यीशु के लिए एक दुल्हन, तो एक स्त्री। और ये स्त्री कैसी थी? ये स्त्री सूरज से ओढ़े हुए थे, मतलब सूर्य का जो रोशनी से ओढ़े हुए थे, और उसके पैर के नीचे चांद और उसके सर के ऊपर 12 तारे। और जो बात, इसका मतलब क्या है? और वो गर्भ भी हुई, दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं गर्भ भी हुई और अब होके वो चिल्ला रही थी, मतलब इस गर्भ की स्थिति उसको पसंद नहीं थी। ये सब क्या मतलब है? ये सब चिन्ह की भाषा है, अभी चिन्ह की भाषा में ये बात समझ जाएंगे। और 5वां वचन पढ़ लेंगे, पहला 5वां वचन।
और वह बेटा जनी जो लोहे का डंडा लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था।
तो इसको बेटा जनी और वो
लोहे का डंडा
लेके
सब जातियों पर राज्य करने पर था और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसका उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया।
और 6वां वचन,
और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक है।
तो देखो, ये स्त्री से पैदा होता है ये एक बेटा और ये बेटा राज्य करने वाला बेटा है। और ये स्त्री वो बेटा को पैदा करने के तुरंत बाद भागता है जंगल को। तो ये मतलब क्या है? आजकल लोग तो कहता है, हमारा मसीह का दोस्तों कहता है, ये तो मरियम है, क्योंकि सितंबर के महीने में अगर आप देखे जाए तो 8वां तारीख में एक पोस्टर बनाएगा, एक स्त्री सूर्य में ओढ़े हुए होते हैं, तारे 12 तारे सर के ऊपर होता है, चाहे हाथ में पकड़ती है और चांद जो पैर के नीचे है, तो ये मरियम है बोलते हैं। और ये बात तो 1940 के आसपास में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने ये बात पढ़ लिया वचन से और बोला मरियम तो जिंदा ही स्वर्ग को उठ के चला गया। अगर ये मरियम होता है तो मरियम ने यीशु को पैदा होके यीशु को छोड़ के कहीं जंगल में भागा 1260 दिन ऐसा किया मरियम ने किया, प्रभु यीशु को छोड़ के भागा कहीं जंगल को नहीं। अगर ये मरियम हो तो मरियम तो बहुत लंबा है, क्योंकि क्योंकि चांद पैर के नीचे है और सूरज ओढ़े हुए है और आसमान में दिखता है। अभी देखो हमारा हवाई जहाज जो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से निकलता है जब ऊपर आसमान में जाता है तो इतना छोटा रहता है, कितना भी नहीं है, इतना बड़ा हवाई जहाज। तो जब अगर मरियम को दिखना है इतने सारे डिटेल्स सर के ऊपर 12 तारे है सब दिखना है तो लंबाई कितना होना चाहिए, 50 माइल 50 माइल 100 माइल। तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, ये सरल भाषा नहीं है, ये ना ही ये बात तो हम ऐसा ही ले सकता है, ये तो प्रकाशित वाक्य के चिन्ह के बाहर है। औरत का मतलब क्या है, औरत का मतलब है बाइबल में कलीसिया, ये है असली कलीसिया का शुरुआत बात बता रहा है। आकाश में आकाश में आसमान में एक नया चिन्ह प्रकट होने लगा, मतलब इस धर्म की दुनिया में धर्म की दुनिया के बीच में शुरू हुआ एक नया विश्वास, एक नया विश्वास, एक नया शिक्षा, एक दुल्हन, एक औरत, कलीसिया, कलीसिया का चुनाव शुरू हुआ। और कलीसिया का स्थिति कैसे था, सूर्य से ओवे। सूर्य का मतलब क्या है, सूर्य है इस दुनिया का रोशनी और इस दुनिया का जीवन, इसलिए हमारा हिंदू दोस्तों सूर्य का नमस्कार करता है सुबह में, हम हंसते हैं देखो सूर्य का नमस्कार कर रहा है, लेकिन वो बराबर कर रहा है, क्यों मालूम, क्योंकि वो सूर्य जो है ना वो एक चिन्ह है परमेश्वर का, क्योंकि सूर्य से क्या मिलता है हमको, दो चीज, रोशनी मिलता है, जीवन मिलता है। वो सूर्य निकालो इस दुनिया में कुछ जीवन होगा, कुछ रोशनी होगा, वो एक चिन्ह है। और वो सूर्य का जो जीवन है ना अंदरूनी से है, अंदरूनी से जलते रहते हैं, किधर से जल आता है, किधर से आग आता है, किधर से जलते रहते हैं, अंदरूनी से परमेश्वर का एक चिन्ह है। बेचारा हमारे हिंदू लोग तो इतना ही समझते हैं अभी, वाह 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 बराबर कर रहा है, आने वाले युग में पता चलेगा कि वो सूर्य का बनाने वाला कौन है, उसके बाद उसको नमस्कार भी करेगा। तो हम तो समझना ये सारे बातें। तो सूर्य का मतलब क्या है हमारे लिए, सूर्य का मतलब क्या है, यहाँ सूर्य का मतलब है जो वचन में पढ़ते हैं, सूर्य का मतलब क्या है, क्योंकि वचन से ही ये बात समझ लेंगे। सूर्य का मतलब 2 कुरिन्थियों 4:4
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश,
सुसमाचार द गॉस्पल, गॉस्पल है सूरज, गॉस्पल में दो बात है, असली रोशनी और जीवन का संदेशा। जैसा सूरज से आता है ना रोशनी और सूरज से आता है जीवन, उसी तरह से सुसमाचार से आता है ये दो चीज। और ये सुसमाचार किसने लाया, प्रभु यीशु लाया, किसने बोलने लगा, प्रभु यीशु ने बोलने लगा। ये सुसमाचार का ज्ञान को किसको मिला, कलीसिया, वे सूर्य से ओढ़े हुए, इसका मतलब है पूरा ज्ञान, सुसमाचार का ज्ञान प्रभु ने दिया है। 3.5 साल शिक्षा देते रहा पिता परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु कौन है, किसके लिए आए हैं, मरेगा किसके लिए मरेगा, जी उठेगा तीन दिन के बाद, सारे के लोगों को क्या मिलने वाला है, प्रभु के योजना क्या है, सारे पुनर्तान का दिन क्या मतलब है, सारे 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 बातें बताया। सुसमाचार, सुसमाचार है यहाँ सूर्य, और ये सूर्य का रोशनी बिल्कुल ये औरत से ओढ़े हुए थे, मतलब ये हम हमारे को असली कलीसिया को सच्चाई का कमती नहीं है, असली कलीसिया को सच्चाई का कमती नहीं है। वचन बोलता है पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा तेरे को सारे सच्चाई के अंदर लेके जाएगा, छुपे हुए बातें को आपको बताएगा। यह है सचमुच पवित्र का काम। आजकल बहुत लोग बोलता है हम आत्मा से भरे हुए हैं, आज नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन उसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। एक बताओ, एक भविष्यवाणी बताओ, इसका मतलब क्या है? तुम क्या मेरे से लड़ रहे हो? तुम मुझसे बैठ कर रहे हो? तो पास्टर को भी को मर्यादा नहीं है? जी आप पास्टर है, तुमसे बहुत मर्यादा है, इसलिए तुमसे सवाल पूछ रहे हैं। पास्टर जी ये वचन बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या है? फिर से वही कर रहा है, वचन का मतलब नहीं जानता इसलिए लड़ रहा है। नहीं बता सकता कि हमको नहीं जानता बेटा, हम नहीं जानता है। पवित्र आत्मा जब आता है तुमको सारे सच्चाई के अंदर लेके जाएगा और आने वाले बातें, भविष्यवाणी बातें तुम्हारे को बताएगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन। तो ये जो है ये सुसमाचार, ये सुसमाचार जो कलीसिया मिला शुरू से 12 चेले से और आज चलते आज तक, परमेश्वर हमको जरूरी रोशनी और जरूरी सच्चाई हमको देते रहा अभी तक देते आ रहा है। तो ये सूर्य से ओढ़े हुए हैं और उसके पैर के नीचे क्या है? चांद। चांद एक और रोशनी है, लेकिन चांद ऐसा रोशनी है जिनका अपना रोशनी नहीं है। वो क्या करता? प्रतिबिंब करता है वो रोशनी। सूर्य का रोशनी प्रतिबिंब करता है और ऐसा दिखता कि उसके उसको रोशनी है, लेकिन उसका रोशनी नहीं है, वो प्रतिबिंब का रोशनी है। तो ये रोशनी क्या है? ये सुसमाचार नहीं है, ये सुसमाचार के छोड़ के एक और ईश्वर का संदेशा है। पुराना नियम वो है चांद। तो कलीसिया को अपने विश्वास में करने के लिए, क्योंकि अभी आज सच्चे कलीसिया, सच्चे मसीह तुम जीना है तो आज बहुत अलग से जीना है, क्योंकि ये दुनिया तो सच्चाई नहीं जानता है, और सच्चाई के अनुसार जीना है तो बहुत अलग किस्म का, अजीब किस्म का लोग देखेंगे हम लोग। तुम लोग अजीब किस्म के लोग हैं, पागल के जैसे लोग हैं, हम ये नहीं करते, ये मानते वो ना मानते, तुम लोग कौन है? तो ऐसा भी जीने के लिए हमारे को ना सिर्फ सुसमाचार का संदेशा हमारे को चाहिए, बल्कि परमेश्वर हमको पुराना नियम में भी वही रोशनी दिखाता है, वही सुसमाचार का योजना, वही सुसमाचार का सच्चाई, वही सुसमाचार का बड़े बड़े आश्चर्यमंड संदेशा जो हमको मिला है प्रभु यीशु के मुंह से, यही पुराना नियम में हमको मिलता है प्रतिबिंब के रूप में, छाया में, नमूना के रूप में, स्वर्गदूत के बातों से, और ऐसे ऐसे पुराना नियम में बहुत सारे बातें हैं जो वही सुसमाचार दिखाता है। तो पांव के नीचे है, इसका मतलब क्या है? कलीसिया को गर्त को खड़ने के लिए, अपने विश्वास में गर्त को खड़ने के लिए पुराना नियम भी बहुत ही फायदेमंद है। पुराना नियम का ज्ञान, पुराना नियम का जानकारी उनके विश्वास को गर्त करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर के ऊपर क्या है? 12 तारे। सर का मतलब क्या है? ज्ञान हासिल करने का। ऊपर है 12 तारे। 12 तारे का मतलब है परमेश्वर का नियुक्त हुआ 12 उपदेशक, 12 चेले, वो हमारा 12 उपदेशक। आज तक उनसे ही हम उपदेश मान ले रहे हैं, उनसे ही हम शिक्षा सुन के सीख रहे हैं, मती से सुन शुरू होके योहाना तक, वो बारह चेले। तो ये है 12 तारे सर के ऊपर। लेकिन ये औरत को क्या होता है? ये औरत को गर्भ होती है, याद में रख लो, ये औरत है कलीसिया। कलीसिया गर्भ होने का मतलब क्या है? ये चिन्ह का भाषा है। असली भाषा नहीं है, ये असली औरत नहीं है, ये कलीसिया चिन्ह के भाषा में बार बता रहा हूं। तो गर्भ होने का मतलब क्या है, ये भी एक चिन्ह है कि ये कलीसिया के अंदर एक नया जीवन उत्पन्न हुआ, कलीसिया के अंदर एक नया जीवन उत्पन्न हुआ, अनदेखी किसी देखा जैसे जैसे ये नया जीवन उत्पन्न हुआ। लेकिन ये औरत चिल्ला रही है, इसका मतलब क्या है, ये जीवन उसको पसंद नहीं है, ये जब हुई ना उसको पसंद ही की नहीं है, चिल्ला रही है। ये है मसीह विरोधी, मसीह विरोधी उत्पन्न हुआ कलीसिया के अंदर, छोटे शुरुआत, अनदेखी शुरुआत, गर्भ की शुरुआत, कलीसिया को पसंद नहीं किया। ये बात तो हम वचन में पढ़ते हैं, अभी आपको याद है वो दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया, मत्ती 13वां अध्याय में, एक मनुष्य अच्छा बीज लेके डाला खेत में डाल के उसके मनुष्य मरने के बाद, सोने के बाद शत्रु आके उसी खेत में बीज डाला, चलते चलते सेवक देखता है जंगली दाने आ गया है, जंगली दाने किधर से आया, मालिक से पूछता है और बोलता है नहीं ये एक शत्रु ये काम किया है, उखाड़े नहीं नहीं मत उखाड़ना, छोड़ दो, दोनों रहने दो, दोनों को बड़े होने दो, कटनी में मैं इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये एक ही खेत के अंदर एक और घुस गया, एक ही शरीर के अंदर एक और घुस गया, औरत के अंदर एक और उत्पन्न हो, नया जिंदगी, एक नया बच्ची, और बच्ची जो पसंद नहीं है, किधर से आ गई, ये चिल्ला रही है, ये क्यों हो रहा है, जैसे जैसे सेवक ने पूछ रहा था मालिक से, ये किधर से हो रहा है ये। तो ये बात तो यहाँ तो दिया गया है मत्ती, जहाँ हमने पढ़ लिया है, या यूहन्ना में प्रकाशित वाक्य। अभी इसका मतलब क्या है, अभी अगले क्या बोलता है कि ये औरत से पैदा होता है एक बेटा, क्या ट्रांसलेशन नहीं है, कोई दूसरा ट्रांसलेशन देखो, ऐसा आना है एक मनुष्य का पुत्र आना है, मैन चाइल्ड, इंग्लिश में मैन चाइल्ड, पंजाबी में क्या दिया है, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 5वां वचन, पढ़ लो,
वो एक पुत्र एक नर बाल।
देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातों हैं, ये है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन अनुवाद करते वक्त हम बहुत होशियार होना चाहिए। ये नर बाल बोलते हुए चलो बेटा लगा देंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बेटा नहीं है, ये नर बाल, मतलब पंजाबी में, हिंदी में क्या है ब्रदर अंकल, आपके पास बहुत सारे हिंदी का किताब ट्रांसलेशन है, जरा दूसरे देख लो क्या दिया है,
बच्चा जो देख लियो पंजाबी में नर बाल,
हाँ लेकिन हिंदी में अगर दूसरा ट्रांसलेशन आपके पास,
बच्चा ही है,
बेटा ही है, ओके। ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर आना चाहिए कि ये एक मनुष्य का पुत्र, इंग्लिश में मैन चाइल्ड, मैन चाइल्ड। तो ये मैन चाइल्ड का मतलब क्या है हम देखेंगे, मैन चाइल्ड बहुत जरूरी है, मैन चाइल्ड। और दूसरा तेस्लोनी का दूसरा अध्याय 3 और 4 कहता है मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष, अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष, और यहां पुरुष पुत्र, पाप का पुरुष, पुरुष पुत्र, पुरुष पुत्र का मतलब क्या है, पाप का पुरुष का मतलब क्या है, दोनों है मसीह विरोधी, लेकिन अलग अलग स्थिति में। यहां दिखाया गया है कि मसीह विरोधी क्या शुरुआत हुआ है, गर्भ में, गर्भ कहां हुआ, औरत के अंदर, औरत के अंदर क्या है, कलीसिया के अंदर शुरू हो गया, कलीसिया के अंदर शुरू हो गया। पहला योहाना 2 अध्याय 18-19 पढ़ लो, पहला योहाना 2 अध्याय 18-19, नहीं नहीं यहाँ 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 मैन चाइल्ड, देखो मैन चाइल्ड, हाँ पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, ओके।
हे लड़को, ये अंतिम समय है, और ज्ञान ने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं।
इसका ट्रांसलेशन भी बराबर है, लड़को नहीं है, यहाँ लड़की भी है, तो लड़कों में बराबर बात नहीं है, ये बच्चों क्योंकि इंग्लिश में लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, आत्मिक रूप में हम बच्चा भी है बच्ची भी है। तो हे बच्चों, तो लड़कों बराबर अनुवाद नहीं है, पढ़ लो।
इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है, वे निकले तो हम
वे निकले कहाँ से, हम में से, मतलब हमारे शरीर से निकलेगा, बाहर आ गया। तो उसी तरीके से जैसा जैसा 9 महीने गर्भ के अंदर स्थिति है, उसके बाद पैदा होता है, बच्चा होता है, उसके बाद चलते 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 बच्चा बड़ा हो जाता है, उसी तरीके से मत्स्य विरोधी का 3 स्थिति है। एक तो गर्भ का स्थिति जो अनदेखी और कमजोर, अनदेखी और कमजोर। दूसरा स्थिति बच्चा, पुरुष का पुत्र, बच्चा पैदा हुआ, देखता है लेकिन कमजोर, उसके बाद बड़ा हो जाता है, पाप का पुरुष। इसका मतलब है देखता है और शक्तिशाली। 3 स्टेज इंग्लिश में कंसेप्शन, वूम्ब स्टेज, इनविजिबल। सेकेंड स्टेज बर्थ, चाइल्ड स्टेज, विजिबल बट पावरलेस। थर्ड स्टेज मैन स्टेज, विजिबल एंड पावरफुल। तो जैसे जैसे हमारे मनुष्य के उदाहरण अगर हम ले ले तो हिटलर एक बच्चा था ना, हिटलर एक समय अपने माँ के कोख के अंदर थे ना, उस वक्त हिटलर नहीं था, बच्चा पैदा हुआ तो हिटलर नहीं था, हिटलर बना जब वो बड़ा होके मनुष्य हो गया, पुरुष हो गया। तो उसी तरीके से ये मसीह विरोधी भी, ये संगठन का शुरुआत भी शुरू होता है 3 स्टेज में, का एक स्टेज, पैदा होके बच्चा एक स्टेज, पुरुष का एक स्टेज। 3 स्टेज ऐसा है, पहला स्टेज है अनदेखी है, इनविजिबल, गर्भ का स्टेज। दूसरा स्टेज प्रकट होता है लेकिन कमजोर, लेकिन तीसरा स्टेज जब पुरुष होता है, दिखता है लेकिन शक्तिशाली। तो ये बात वचन बताता है हमको, ये मसीह विरोधी के बारे में। मसीह विरोधी का शुरुआत हुआ, मसीह विरोधी का बढ़ोतरी हुआ, और मसीह विरोधी चलते चलते अपने शक्ति दिखाया। अपने शक्ति दिखाने का कितना, 1260 दिन। ये 1260 दिन में असली कलीसिया औरत क्या करता है, भागता है जंगल को, भागता है जंगल को। जंगल का मतलब क्या है, जंगल भागने का मतलब क्या है, यह है चिल, सिंबॉलिक। इसका मतलब है अपने आप को अलग करते हैं, नहीं मन में अलग, अपने आप को अलग करते हैं। यहां एक काम हो रहा है, यहां एक योजना हो रहा है, यहां सब इकट्ठा हुआ है, इसमें अलग करते हैं, इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, तो जंगल में भागता है। पुराने दिनों में अगर हम एक स्थान में हम रहने को नहीं चाहा तो हम भागेंगे उधर से, किधर भागना है, जंगल को भागना है। मतलब हम अलग, जंगल में क्या है, कोई भी नहीं रहता है, वहां अलग सा हम रह सकता है ना। उसी तरीके से जंगल से, जंगल को भागने का मतलब है कि बात से हम अलग हो जाते हैं, लेकिन ये मन में, माइंड में, हम इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इससे अलग हो जाते हैं। तो असली कलीसिया जब ये सारे मसीह विरोधी का काम शुरू हुआ कलीसिया के अंदर, असली कलीसिया अलग हुआ, असली कलीसिया अलग हुआ, असली कलीसिया समझ गया कि ये वचन के अनुसार नहीं है। तो वचन के अनुसार के कामों में हम अंदर नहीं आएंगे, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यही बात तो 1260 दिन एक और जगह में दिया गया है, वही प्रकाशित वाक्य 12:14।
और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उठकर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए।
तो एक समय और समयों और आधी समय, समय पाली जाए। आपने याद होगा 28वां क्लास सुन लिया है, भविष्यवाणी हिसाब को समझने के लिए। समय, समयों, आधी समय, समय का मतलब एक समय, समयों का मतलब 2 समय, आधी समय का मतलब आधी समय। समय का मतलब है भविष्यवाणी के हिसाब में एक वर्ष, एक साल। तो एक साल, 2 साल, आधे साल, डेढ़, ये 3.5 साल। ये 3.5 साल का मतलब है 1260 दिन। एक और जगह ये बात पढ़ते हैं, दानियल 7:25। दानियल 7:25।
ਉਹ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਹਾਨ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵੇਗਾ ਔਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕਰਨ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
प्रकाशित वाक्य 13:5। प्रकाशित वाक्य 13:5।
कौन उस सकता है और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया।
तो देखो वचन में वही प्रकाशित वाक्य में ये वाक्य विरोधी का दिया हुआ समय मतलब परमेश्वर के अनुमति हुआ समय जो समय समयों और आधे आधे समय जो 1260 दिन यहाँ दिया गया है 42 महीने। आपको याद होगा कि ये क्लास के पढ़ते हुए ये सब एक ही हिसाब है 3.5 साल 1260 दिन और 42 महीने। इधर से हम मालूम हुआ कि प्रकाश ये भविष्यवाणी के हिसाब में एक दिन का मतलब है 1 साल। ये तो हम पता किया 2 वचन से, परमेश्वर 2 वचन में से हम मालूम हो गया कि दिन का हिसाब अलग अलग होता है। प्रभु यीशु के 1 दिन 1000 साल, परमेश्वर का 1 दिन 7000 साल। और भविष्यता जब भविष्यवाणी बोलता है जब वो बोल 15 दिन लगेगा, ये 15-24 घंटे का दिन नहीं है, वो मतलब है 15 साल, क्योंकि भविष्यता का बोलिए 1 दिन का मतलब 1 साल। वचन में पढ़ लेंगे एहेजकेल 4:6। एहेजकेल 4:6।
और जब इतने दिन पूरे हो जाए तब अपनी दाहिनी पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सहना, मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष की संति का दिन अर्थात 40 दिन ठहराए है।
तो 40 दिन का मतलब है 40 वर्ष। गिनती 14:34। गिनती 14:34।
जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने धर्म का दंड उठाते रहेंगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है।
तो दिन के लिए 1 वर्ष, तो दिन का हिसाब कैसे है, लेकिन वो हिसाब दिन का 24 घंटे का दिन नहीं है, वो एक एक दिन का मतलब है 1-1 वर्ष। 40 दिन का मतलब है 40 वर्ष। तो 1260 दिन का मतलब है 1260 वर्ष। हमने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 42 महीने, इसका मतलब है 3.5 साल। उसमें से हम मालूम हुआ कि ये साल जो है ये तो सूर्य का हिसाब का साल नहीं है। सूर्य का हिसाब का साल में 365.5 दिन आता है, लेकिन चांद का हिसाब में 307 से कम दिन होता है, लेकिन ये है भविष्यवाणी के हिसाब, प्रोफेटिक डेज। एक भविष्यवाणी के वर्ष में आता है 307 भविष्यवाणी के हिसाब के दिन। तो ये वचन का एक रहस्य है जो हमने सीख लिया और समझ लिया है। तो उसमें से हम मालूम हो गया कि ये मसीह विरोधी के लिए परमेश्वर जो दिया गया अनुमतित समय एक हर 260 वर्ष दिया, 1260 साल दिया। इस समय में विरोधी का आत्मा प्रकट हो जाएगा। मसीह विरोधी के आत्मा के बारे में पहला योहन्ना 4:3 आत्मा का मतलब है शिक्षा, आत्मा का मतलब है शिक्षा। पहला योहन्ना 4:3
और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है।
तो इसका मतलब है शिक्षा, मसीह विरोधी के आत्मा का मतलब है मसीह विरोधी का शिक्षा। तो मसीह विरोधी का शिक्षा प्रकट होगा, हर किस्म का झूठा शिक्षा और झूठा उपदेश होगा। इस संगठन से प्रकट हो जाएगा ये उपदेश और ये शिक्षा। वचन में पढ़ते हैं ये शिक्षा कैसे स्थापित होता है, अनेक किस्म के चंगाई के जरिए से और अनेक किस्म के बड़े बड़े चिन्ह के जरिए से। वचन में पढ़ते हैं 2:9 2 Thessalonians 2:9
उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ।
हाँ, तो ये ऐसा झूठा शिक्षा और ऐसा झूठा उपदेश को कैसे स्थापित होता है, सामर्थ के जरिए से, ये अद्भुत कामों के जरिए से, इस जरिए से लोगों को विश्वास करते हैं ये शिक्षा। तो ये शिक्षा है मसीह विरोधी का आत्मा। तो ये 2000 साल रहने वाले ये मसीह विरोधी का संगठन जो कलीसिया के अंदर है, क्या हम पहचानते हैं? इसका जवाब है नहीं। क्यों? ये अधर्म का भेद है, अधर्म का भेद है। जो कभी वेद को बात करते हैं इसका मतलब रहस्य है, नहीं जानता है। तो ये अधर्म का वेद, ये मसीह विरोधी, जिसको परमेश्वर ये संगठन को इस उजाड़ करने वाले घृणित वस्तु को परमेश्वर अनुमति देता है 1260 साल, कौन है ये मसीह विरोधी, कौन है ये संगठन? क्या वचन से हम पता कर सकता है? ये 1260 साल खत्म हो गया, चल रहा है, ये सब का जवाब हम और चाहिए, अभी तक इसको प्राप्त नहीं किया। 666 का मतलब क्या है, ये सब हम पढ़ना है। लेकिन आज हम पहले भाग में, मसीह विरोधी के पहले भाग में, ये बात हम समझ लिया कि मसीह विरोधी मतलब वचन के मसीह विरोधी, ये तो एक बहरूपीय संगठन है। ये एक बहरूपीय संगठन जो असली कलीसिया के अंदर आके खड़ता है और बैठता है। ये एक ऐसी संगठन है जो शैतान झूठी शिक्षा से स्थापित करते हैं और जो अद्भुतों से और जो सामर्थ के जरिए से स्थापित करता है। कहां? असली कलीसिया के अंदर, असली कलीसिया के बीच में बैरूप्य है, ये अधर्म का भेद है। क्या ये भेद हम पता कर सकता है? क्या है ये भेद को हम ढूंढ के हम पहचान सकता है? ये तो हम दूसरे भाग में हम देख लेंगे। ये तो सिर्फ पहला है, पहला भाग से हम वचनों के जरिए से हम ये बहुत बड़ा सच्चाई हमने समझ लिया है कि ये जो मसीह विरोधी कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई राजा नहीं है, राज्य करता है, संगठन है, अनेक मसीह विरोधी इसके अंदर होता है। ये आज हम पहले भाग में समझ लिया, दूसरे भाग में हम कोशिश करेंगे ये मसीह विरोधी को पहचानने के लिए। और साथ साथ 666 तो मसीह क्या है, तो परमेश्वर ही अपने पवित्र वचन को आशीर्वाद करें। आमीन।